भाग सुलगते धागे जब चादरें जवाब मांगने लगे। रात 5:10 हवेली के बाहर खड़ी कार। चारों ओर अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली अब शांत थी, संगीत थम चुका था, मेहमान जा चुके थे, कुछ वेटर सो चुके थे, बाकी सामान समेट रहे थे। पर वो कार जो अब भी वहीं खड़ी थी, उसमें बैठा था अखिल। इंजन बंद था लेकिन उसकी धड़कनों का इंजन अब भी दौड़ रहा था। पीछे की सीट पर उसकी जैकेट फैली थी, दाहिनी ओर ग्लव बॉक्स खुला था, सीट बेल्ट भी अधूरी टंगी थी, जैसे वो वहां बैठने नहीं भागने आया हो, पर भाग नहीं पाया। उसने सामने देखा, विंडशील्ड के उस पार धीमी रोशनी में हवेली का ऊपरी कमरा अभी भी साफ दिख रहा था, वही कमरा जहां कुछ घंटे पहले उसने खुद को खो दिया था। उसने अपनी आंखें बंद की और वो दृश्य फिर से लौट आया, वो पल जब उसने रैना का हाथ पकड़ा था, उसकी कलाई की गर्माहट अब भी उसके हाथों में थी, वो नजरें जो उसे देख रही थीं, डर और नफरत के बीच की झील में डूबी हुई, वो सहरन जब उसने उसे अपनी ओर खींचा था और जब उसने खुद को एक पल को रोका नहीं, फिर वो चुप्पी जिसमें कोई इजहार नहीं था पर इनकार भी नहीं। उसके होठों पर अब भी रैना की सांसों की धुन सजी हुई थी और वो एहसास जब उनकी देहें एक दूसरे से उलझी थीं, कुछ पाने नहीं बस कुछ कहे बिना सुन लेने के लिए। रैना, अखिल ने बुदबुदाया जैसे हवा से उसका नाम मांग रहा हो। फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली। अगर मैं उस वक्त ना आता तो? उसका गला सूख गया। वो सीन उसके दिमाग में कौंध गया, विवेक की आंखों की वासना और रैना की उलझी हुई मासूमियत। अगर मैं 2 मिनट और रुक गया होता? उसके दोनों हाथ अब स्टीयरिंग व्हील पर थे लेकिन अब वो थाम नहीं रहे थे, थरथरा रहे थे। वो उसके साथ, वो कल्पना भी जैसे उसके फेफड़ों से हवा चूस रही थी, उसका पूरा वजूद सहर गया। किस हक से सोच रहा हूं मैं ये सब, उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब नहीं दिया क्योंकि सच यही था, वो हक अब उसके पास नहीं था। रैना अब उसकी नहीं थी, कभी थी भी नहीं, क्योंकि जो रिश्ता जबरदस्ती लिखा गया हो वो जुड़ता नहीं, बस टूटने की देर होती है। पर फिर भी आज जो हुआ वो कुछ और था। उसने रैना को देखा था, उन कपड़ों में सिमटी जरिमा को, उस कमजोरी को जो उसने बड़ी मजबूती से छुपाई थी, और उस देह को जो कांपी नहीं थी पर हिली थी उसकी सांसों के साथ। अखिल ने अपनी आंखें बंद की। उसकी गर्दन की नाजुकता, उसकी उंगलियां जब मेरी पीठ पर थमी थी, उसकी पीठ की गर्माहट और वो सिसकी जो उसने दबा ली थी, उसका पूरा शरीर फिर से उसी पल में डूब गया था। वो कोई प्रेम नहीं था पर एक एहसास था जो हर स्पर्श में बोल रहा था। उसका बदन इतना कोमल और फिर भी इतना मजबूत। उसके होंठ कांप उठे। मैंने कभी महसूस ही नहीं किया था कि वो इतनी खूबसूरत है। वो अब अपने सिर को सीट पर टिकाए बैठा था जैसे कोई थका हुआ योद्धा जो जीत नहीं पर लड़ाई की गर्माहट से अब भी तप रहा हो। और वो अगर रो देती, अगर मुझसे कुछ कह देती तो शायद मैं भी रुक जाता, लेकिन नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। उसने मुझे छुआ, जवाब नहीं दिया लेकिन पलटा भी नहीं। ये कौन सा बंधन था? ना प्रेम ना अधिकार, फिर भी एक ऐसा बंधन जिसने उसका सब कुछ थाम लिया था। मैंने उसे छुआ था लेकिन अगर उस जगह कोई और होता, विवेक होता, उसका चेहरा तन गया, मैं उसे मार देता। ये सोचते ही उसके सीने में ज्वालामुखी सा फट पड़ा। कोई और उसकी देह को हाथ लगाए ये सोच भी कैसे सकता हूं मैं, लेकिन मैं कौन हूं? उसका ही सवाल, उसका ही उत्तर और उसी में उलझा अखिल। सुबह की पहली किरण अब दूर पहाड़ियों पर दिखाई देने लगी थी। गाड़ी की खिड़की के शीशे पर हल्की नमी जम गई थी। अखिल अब भी वहीं बैठा था जैसे कोई अपराध बोध और अधिकार की रेखा को बार बार मिटा रहा हो। उसने जेब से एक छोटी सी चेन निकाली, वही चेन जो रैना ने शादी के कुछ दिनों बाद पहननी शुरू की थी और फिर तलाक के बाद उतार दी थी। मैंने सब कुछ छोड़ा था और आज सब कुछ पा लिया बिना मांगे, उसने एक लंबी सांस ली। और फिर भी कुछ है जो अधूरा रह गया। अगले पल कार का दरवाजा खुलता है। अखिल अब बाहर आ चुका था। उसका चेहरा रात के मुकाबले कुछ और कठोर था, जैसे अब वो तय कर चुका है कि इस एहसास को कोई नाम नहीं देगा। लेकिन कहीं भीतर वो जानता था ये रात उसे कभी चैन से सोने नहीं देगी।